समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मनोज सिंह राणा। मनोज, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू आवर लिसनर्स एज वेल हु आर ट्यून्ड टू परिक्रमा, अ न्यूज मैगजीन प्रोग्राम ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज। Dear listeners, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business, tributes, and much more. And all these over the next 30 minutes. Let's begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Maldives President Dr. Mohamed Muizu in New Delhi, says India has always played the role of first responder to the Maldives.
मालदीव में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत शुरू।
यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह प्रेजाइड्स ओवर क्रूशियल रिव्यू मीटिंग विद चीफ मिनिस्टर्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड स्टेट्स, सेज नक्सलिज्म इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल ऑन द पाथ टू डेवलपमेंट।
प्रधानमंत्री ने आज सार्वजनिक पद पर 30 वर्ष पूरे किए। गुजरात सरकार इस अवसर पर आज से विकास सप्ताह मना रही है।
Israel pays tributes to those killed during the October 7 assault by Hamas last year. Tensions in West Asia region remain high.
ISSF Junior Vishw Shooting Championship में भारत 13 स्वर्ण पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा।
And in Women's T20 Cricket World Cup, England to take on South Africa at Sharjah this evening. And now it's time for our segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national and global level. Today we'll talk about the World Cotton Day and World Habitat Day.
कॉटन या सूती के कपड़े हमारे वार्डरोब में सबसे आम परिधानों में से एक है। मनोज, है ना, आप मानते हैं कि जब भी हम इंडिया में कुछ भी फेस्टिव्स होता है, कुछ भी हम त्योहार होता है, तो उसके लिए तैयार होने के लिए सबसे पहले जो हमें कपड़े मिलते होंगे उसमें से वे कॉटन के ही रहते होंगे।
दैट्स राइट, इट इज अ कल्चर, इट इज अ वे ऑफ लाइफ एंड अ ट्रेडिशन विद इट्स रूट्स एट द हार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। आकर्षिता,
राइट, कॉटन के कपड़े बहुत ही आरामदायक टिकाऊ होते हैं। सूती कपड़े दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़ों में से एक हैं। कॉटन के प्रति बढ़ावा देने के लिए विश्व कपास दिवस हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कपास ही वो एक मटेरियल है जिससे कॉटन की उत्पत्ति होती है, जिससे कॉटन बनता है। और इस दिन का उद्देश्य कपास उत्पादन से जुड़ी चुनौतियों को सामने लाना, प्रोडक्शन की नई तकनीकों को डेवलप करना और इसे बढ़ावा देना है। भारत में तो ज्यादातर लोग कपास से बनाए जाने वाले कपड़े ही पहनते हैं, जो आरामदायक होने के साथ ही सांस लेने योग्य और टिकाऊ भी होते हैं और यहां के क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से भी काफी उपयुक्त हैं।
Yeah, that's right. It is comfortable, hypoallergenic, breathable and durable. But it also represents so much more than just a commodity. This natural fabric is a life-changing product worldwide that sustains 32 million growers, almost half of them women, and benefits over 100 million families across 80 countries in five continents.
इसका मतलब ये है कि किसी भी सूती कपड़े के पीछे उसकी व्यापार श्रृंखला का अनुसरण करते हुए एक व्यक्तिगत कहानी होती है। ये सच है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए कपास वास्तव में महत्वपूर्ण है, लेकिन कम विकसित और विकासशील देशों के लिए ये एक सुरक्षा जाल है। कपास महिलाओं सहित कई ग्रामीण छोटे धारकों और मजदूरों के लिए आजीविका और आय का एक प्रमुख स्रोत है, जो दुनिया के सबसे गरीब ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार और आय प्रदान करता है। कॉटन उद्योग महज कपड़े बनाने का ही काम नहीं करता, बल्कि कई लोगों के रोजगार का बहुत बड़ा जरिया भी है।
That's right. It touches us every day. It is a source of livelihoods for millions of smallholders and labourers, including women and their families, and contributes significantly to the economies of many developing countries. And this time, UN World Cotton Day 2024 will be celebrated for the first time in the African continent, in Cotonou, Benin, making the first time ever the event will be held in a country rather than at an international organization. And the objective of the global celebration about the World Cotton Day is to raise the visibility of the cotton sector and the awareness of the critical role that it plays in economic development, international trade, and poverty alleviation. And to enhance the global image, if we talk about the Indian context, and the government has launched the Vocal for Local initiative, which has been launched by the Ministry of Textiles, another campaign called Kasturi Cotton Bharat Program, which is a pioneering effort in traceability, certification and branding of Indian cotton in particular. This initiative, Akashita, is a collaboration between the central government, trade bodies and industry.
राज्य के कृषि मंत्री राघव जी पटेल ने बताया कि 26 लाख 8 हजार हेक्टेयर खेती योग्य क्षेत्र के साथ कपास राज्य के अर्थतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आइए जानते हैं एक रिपोर्ट।
सफेद सोना कहे जाने वाले कपास से गुजरात का बरसों पुराना नाता है। वर्ष 1960 में जब गुजरात राज्य की स्थापना हुई, तब से अब तक राज्य कपास उत्पादकता में 459 किलो प्रति हेक्टेयर का इजाफा हुआ है। गुजरात द्वारा विकसित कपास की संकर चार किस्मों के बाद पूरे देश में संकर कपास युग की शुरुआत हुई, जिससे भारत की कपास उत्पादकता में भारी वृद्धि देखने को मिली। भारत ने वर्ष 2021 में रिकॉर्ड ब्रेक 10,787 मिलियन डॉलर की कीमत के कपास की निकास दर्ज करवाई थी। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पिछले दो दशकों में कपास उत्पादन क्षेत्र में गुजरात का चित्र बदल गया है। वर्ष 2001-2 में जब गुजरात में कपास का खेती योग्य क्षेत्र जो 70.40 लाख हेक्टेयर का था, वो अब 26,08,000 तक पहुंच गया है। राज्य सरकार की अनेक योजनाएं एवं अन्य प्रयासों से आने वाले समय में गुजरात पूरे देश में कपास उत्पादन का केंद्र बनेगा और देश के कुल कपास उत्पादन में भी गुजरात का योगदान सबसे ज्यादा रहेगा, ऐसा विश्वास राज्य सरकार ने व्यक्त किया है। परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं प्रवेश अडियेचा।
और मनोज, हम देख सकते हैं कि गुजरात सहित देश के कई राज्यों में कपास की खेती होती है, उससे कई लोगों को रोजगार मिलता है जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं। तो एक तरीके से बोला जाए तो ये हमें सिर्फ कंफर्ट ही नहीं दे रहा है, बल्कि एक रोजगार भी प्रोवाइड कर रहा है। और सरकार विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से कपड़ा क्षेत्र को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। सरकार की भूमिका कच्चे माल और उत्पादन के अन्य कारकों तक पहुंच को सक्षम करने, लागत प्रतिस्पर्धी बढ़त के साथ उच्च दक्षता प्राप्त करने में विनिर्माण सेटअप का समर्थन करने और बाजारों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने तक फैली हुई है।
We just talked about the World Cotton Day, but as I mentioned earlier, we are also observing the World Habitat Day. The day serves as a powerful reminder that everyone is entitled to a decent and safe place to live. On this day, governments, communities and individuals are urged to work towards improving housing conditions, creating secure environments and making neighbourhoods safer. And Akashita, every World Day that we celebrate, they have a particular theme as well. And the theme for World Habitat Day this year is engaging youth to create a better urban future, which focuses on the opportunities and challenges associated with rapid urban growth. The aim is to encourage the younger generation to participate in planning their current and future environments.
रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत जरूरत की चीजें हैं, लेकिन इस धरती पर रहने वाली एक बड़ी आबादी के पास रहने के लिए घर नहीं है। लोग रोजगार, शिक्षा और अच्छे जीवन जीने के लिए गांव से शहरों और कस्बों की तरफ पलायन करते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी समस्या वहां रुकने के लिए आवास की हो जाती है। तो ये दिन इस बात की याद दिलाता है कि हर किसी को रहने के लिए एक सुरक्षित और उचित जगह मिलनी चाहिए। विश्व पर्यावास दिवस लोगों, समुदायों और सरकारों को आवास की स्थिति में सुधार, पड़ोस को सुरक्षित बनाने और सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
And it was in 1985, Akashita, when the United Nations General Assembly realized this, the need of habitats, and it was first celebrated then as the first Monday in October for this observance that we celebrate the World Habitat Day.
लोक निर्णय
जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के चुनावी परिणाम
कल 8 अक्टूबर सुबह 9 बजे से
मतगणना की पल पल की खबर
हर सीट की सटीक जानकारी
संवाददाताओं से ताज़ा हाल
और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
आकाशवाणी गोल्ड सहित अन्य फ्रीक्वेंसीज पर सुनिए
लोक निर्णय
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
लेट्स बिगिन विद द मेगा 7,000 किलोमीटर लॉन्ग वायु वीर विजेता कार रैली विच विल बी फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम तोइस इन लद्दाख टू मार्क द 92nd एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। Tomorrow, the car rally will reach Tawang in Arunachal Pradesh on the 29th of this month, where it will culminate its journey. Earlier in the first of this month, Defence Minister Rajnath Singh had given a warm send-off to the rally from the National War Memorial in New Delhi. Union Minister of State for Road Transport and Highways, Harsh Malhotra, has arrived in Thois to drive the Jimny cars to Leh in order to support and boost morale of air warriors. Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari has also extended his complete support to the car rally. The rally holds a special significance both for the Indian Air Force and the Indian Armed Forces. We have a very special report from our correspondent.
The Vayu Veer Vijeta car rally is a testament to the incredible journey and impression left by the Indian Air Force IAF over its 92-year-old history. The rally will be flagged off from Thoise in Ladakh, one of the world's highest altitude Air Force stations at 3,068 meters above mean sea level. The 22-day long car rally will finally culminate at Tawang in Arunachal Pradesh on 29th October. 52 Air Warriors, including women, will be behind the wheels during this mega car rally, which will also witness the participation of former Air Force chiefs in different legs. The Air Warriors will make 16 halts including Leh, Kargil, Srinagar, Jammu, Chandigarh, Dehradun, Agra, Gorakhpur, Darbhanga and Guwahati, which will comprise interactions with students in various colleges and universities. The National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited, NHIDCI officials will also be participating in the launch at Leh with an interesting tagline, Yes, we make highways for fighter jets too. Uttarakhand War Memorial veterans, a major partner of the rally, are driving up to Tawang to extend their support. The aim of the rally is to raise awareness among the people about the glorious history of IAF, the deeds of valor of the air warriors in different wars and rescue operations, and attract the youth to serve the motherland. Adarsh Kumar for Parikrama, Akashvani News, Delhi.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन हाल ही में किया गया। अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता नम्रता फालके।
नागपुर वर्धा रोड पर जामठा क्लोवर लीफ में ऑक्सीजन बर्ड पार्क स्थापित किया गया है। इस पार्क का उद्घाटन 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की पहल के तहत नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 पर इस ऑक्सीजन बर्ड पार्क का निर्माण किया गया है। 14.5 करोड़ की लागत पे यह प्रोजेक्ट करीब 20 एकड़ में साकार किया गया है। यहां विशेष रूप से पक्षियों के लिए फलदार वृक्ष लगाए गए हैं। इस पार्क का महत्व केवल प्राणवायु देने वाला क्षेत्र ही नहीं बल्कि यह क्षेत्र विभिन्न प्रजाति के पक्षियों के लिए भी आश्रय स्थल के रूप में उपयोगी साबित होगा। 8104 प्रकार के पौधों के साथ इस 11 हेक्टेयर परिसर में प्राकृतिक झीलों को भी शामिल किया गया है। नागपुर में इस ऑक्सीजन बर्ड पार्क के माध्यम से नागरिकों को पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण के महत्व का पता चलेगा, ऐसा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से मैं नम्रता फलके।
India is a land of diversity. We not only have diversity in cultures, but most of the communities or states also have their own calendar. Likewise, Manipur has a Manipuri calendar, also known as Meitei calendar, Kangli Park calendar or Melia Farm Palcha Kumshing calendar, which has 12 months. The months are based on the lunar cycle and each month ends with a new moon. Among these months, Mera month occasionally falls in the month of October of Julian and Gregorian calendar and is well known for its different festivals celebrated with the aim of communal harmony and unity. Let's hear from our Imphal correspondent, J.J. Thokchan.
On the first day of Mera month of Maitri calendar, the religious festival of Manipur, Mera Hau Songba, is celebrated, dedicating to Lop Sanamahi and Lemarin Sidibi by Maitri and indigenous tribal communities. This year, the festival was held on 3rd October and the Manipur titular king led others in the festival. The theme of the festival is solidarity and fraternity of the ethnic groups of the region. The main location of the festival is the Tangla Palace and Sanamahi Temple located in Imphal, where devotees offer fruits, vegetables, rice and others. The devotees also took out a march from the temple to Kangla Palace to collect sacred water from Nungjeng Pukhri in Kangla Palace to offer to the deities at the temple. On the 10th lunar day of Mera month, Manipur celebrates Kwak Tanba Festival. The festival will be held on 13 October this year, in which the king of Manipur will release a crow from his custody. The setting free of crow is traditional perform at the Thangapat, which is Royal Mode in Imphal. The main purpose of the festival is to bring prosperity and good luck in the region. The most important festival in the Mera month of Maitri calendar is Mera Hau Songba. The festival is celebrated every year on 15th lunar day of Mera month, which is 17 October this year. It is celebrated jointly by Maitri and all indigenous tribes of Manipur. On this day, hill people came down to Royal Palace in Imphal and so their culture in dance and other art forms. The day ends with a grand feast held together with Maitri and all indigenous tribes to show oneness of all ethnic groups in the region. On this day, a lamp tied to a tall green bamboo is lighted and installed in the Maitri household who reside in the valley to indicate the well-being of Maitri to his elder brother Tangkhul community who lives in the hills. Apart from the above festivals, Manipur also celebrates Mera Men Tongba, Dussehra and other religious festivals in Mera month in Manipur. J.J. Thokchan, Akashvani Samachar, Parikrama, Imphal.
And now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
The day of 7th October is marked as a black day in the history of India's freedom movement because on this day in 1930, the death sentence to great freedom fighters and revolutionaries Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev in the Lahore conspiracy case was pronounced. A special tribunal was set up by the British imperial government to speed up the trial as the popularity of the revolutionaries in the Lahore jail was increasing day by day and stirred the national sentiment in the entire country.
Viceroy Lord Irwin declared an emergency on 1st of May 1930 and introduced an ordinance to set up a special tribunal composed of three High Court judges for the case. This decision cut short the normal process of justice.
On 2nd July 1930, a habeas corpus petition was filed in the High Court challenging the ordinance. The petition argued that the Viceroy had power to introduce an ordinance only under conditions of a breakdown of law and order. The petition claimed that in this case, such condition had not occurred.
However, the petition was dismissed as being premature. 7th October is also the birth anniversary of a woman freedom fighter from Tamil Nadu, S.N. Sundarambal, who was born on this day in 1913 in Tirupur. Several freedom fighters from Tirupur and Coimbatore districts fought for the nation's cause during the British era, but statues of only two of them have been erected in Tirupur city.
One of them is Tirupur Kumaran, also known as Kodikatha Kumaran, who is among the most celebrated freedom fighters from the region. The other is a simple and humble S.N. Sundarambal, who didn't step back from the front line of the movement even when nursing a newborn. Sundarambal was born in Veerapandi in Tirupur. Despite being from a rich family, she was interested in social service and the freedom struggle. In 1928, Mahatma Gandhi requested the public to donate to the Congress Party to fight the British rule.
Sundarambal climbed the stage and offered her gold bangles to the great leader. Mahatma Mahatma Gandhi told her to instead join the non-violent resistance for Indian independence. Sundaram Bal went on to participate in several protests during the freedom struggle, and during the Satyagraha protest in 1941, she was arrested along with her newborn son and jailed in the Vellore prison for 3 months. She participated in the Quit India movement and was arrested and sent to the Vellore prison again.
In 1943, Sundaram Bal organized a large-scale demonstration in Tirupur against the British government and was again arrested and jailed for 3 months. After independence, she took an active interest in ensuring farmers' welfare in the district and organized many protests for them.
7th October is also the death anniversary of freedom fighter, reformer and educationist K. Kelappan Nair, who is also known as Kerala Gandhi. He was a founding member and president of Nair Service Society. In 1930, he led the salt satyagraha and marched to Payyanur beach and made salt.
Besides, he also fought relentlessly against untouchability and caste-based discrimination. He played a crucial role in the unification of the state of Kerala. He was elected to parliament in 1952.
और अब समय हो चला है डिफेंस न्यूज कैप्सूल का. जनसंपर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय से इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है प्रसारण अधिकारी आनंद सौरभ ने.
Ma'am, to start with, if you can give the historical perspective, the journey that MNS has undertaken in past 29 years.
This military nursing service that is called permanent nursing service in Indian Army constituted on 1st October 1926. Over the period, there were a lot many changes, and in the 1947 post-independence, Colonel Mrs. D.G. Howard was the first appointed as the first chief principal matron of Indian military nursing service. Whereas in 1950, we had Brigadier Miss J.M. Stax, that is the first matron in chief. So by which we had various changes in the till date, and we also got various honors and awards towards our services. That is, we have got a PVSM 3, AVSM 17, VSM 50, CNM SM 3, and mentioned in dispatch we have 15. So over the period we have done tremendous work for our troops and the families, and by which we are competent enough and we are highly skilled. At the same time, we are also entering into the 100th celebration. That is, next year we are going to have 100th centenary celebration of the military nursing service.
Yes, once again, recognition for the MNS. And if you can explain to our listeners the roles and responsibilities of the service.
See, these are MNS officers. Everybody knows they are highly skilled and competent and dedicated nursing professional. They have been delivering the high quality nursing care to the Army, Navy, as well as the Air Force Hospital. In addition to this, they have also been placed into the teaching institutions, and also in the UN mission keeping forces. They also play a pivotal role, like Sudan, Congo and Lebanon they have been serving. They also form a part of the disaster relief during the calamities. And these officers play a critical role in providing the comprehensive nursing care to the armed forces personnel and their families always.
Yes, ma'am. If we come to the process of joining the MNS, how to join this illustrious career?
We have got a selection process for the training in the AFMS institutions. That is through the NEET. Students appear in the final year examinations in the current academic session, taken apply for these admissions. And we put the notifications in the leading national newspaper and also in the website, that is www.joinindianarmy.nic.in. And the criteria is, it is an Indian female candidates. They are eligible to apply with a minimum 50% marks, that is in the physics, chemistry, biology, as well as in the English in 12th class. The selected candidates have been called for the interview, where they have to undergo the teaching of general English and general intelligence, that what we call it as a TOGI, and also they have to appear for the medical examinations, followed by the psychological assessment and test. Then after these various procedures, then we take out the merit. As per the merit, they have been placed in the various colleges of nursing which we have under AFMS, that is 6 colleges of nursing, that is Mumbai, Pune, Lucknow, Kolkata, Delhi and Bangalore. So after the completion of the 4 years of training as in the BSc, then they will be commissioned into the military nursing service.
And what are the options for a civil trained nurse to join MNS?
Yes, we do also have a graduates and postgraduate nurses trained in the civil also joins. This selection process is also on merit basis. That is, we have got a national entrance examination which is conducted by the NTA. Followed by that, we have a interview. When they clear the interview, then they have to undergo the medical fitness. So subject to medical fitness, then they again the merit list is taken and they will be placed in the various hospitals as a nursing officers. They will be commissioned into the military nursing service, but they will be commissioned as a short service commission nursing officers.
And then before we conclude, what is your message, valuable advice to those young girls who aspire to join MNS and who aspire to make their career in nursing?
The nursing is not a career. It is a noble profession and it has got endless opportunities. It is not only in the military nursing service. Once you become a nurse, you have got a plenty of opportunities to make a meaningful difference in your life of others. So if you have a heart for service and desire to heal and a commitment to excel, then you can consider joining this military nursing service.
Thank you so much for talking to us, ma'am.
For Parikrama, this is Anand Saurav from the Directorate of Public Relations, Ministry of Defense.
Now news from the business world, where the domestic benchmark indices extended their losses for the sixth consecutive session today, led by sell-off across various sectors. The BSE Sensex plunged over 600 points, while the Nifty 50 settled below 24,800. At close, the Sensex declined by 638 points to close at 81,050, while the Nifty lost 218 points to settle at 24,795. In the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading at 76,360 rupees for 10 grams. Silver 999 fine is trading at 92,830 per 1 kilogram when reports last came in. And now we have interesting news from the field of shooting. The sports news, Indian shooters topped the medals tally at the ISSF Junior World Shooting Championship with an impressive 24 medals, including 13 gold, 3 silver and 8 bronze in Peru. Now the shooting bonanza will shift to New Delhi for the prestigious ISSF World Cup final in rifle, pistol and shotgun, scheduled for October 13th to the 18th.
महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज ग्रुप बी में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच शारजाह में मुकाबला होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। वहीं बिलियर्ड्स में भारतीय खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने कल जार्डिन ओंग को 5-1 से हराकर सोंघी सिंगापुर ओपन खिताब जीत लिया है। और अब समय है उन व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। तो आज हम सबसे पहले याद कर रहे हैं बेगम अख्तर को, आज उनकी जयंती है। बेगम अख्तर ने फैजाबाद में सारंगी के उस्ताद ईमान खां और अता मोहम्मद खां से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ली। इसके अलावा उन्होंने मोहम्मद खां अब्दुल वहीद खां से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा। बेगम अख्तर ने 1953 में प्रदर्शित फिल्म दाना पानी के गीत ए इश्क मुझे और कुछ याद नहीं और 1954 में प्रदर्शित फिल्म एहसान के गीत हमें दिल में बसा भी लो गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्हें कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1968 में पद्मश्री और सन 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।
मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया।
एडगर एलन पो, द अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर, poet, critic and editor who is famous for his cultivation of mystery and macabre, died on this day in 1849 in Baltimore. His tale, The Murders in the Rue Morgue, initiated the modern detective story, and the atmosphere in his tales of horror is unrivaled in American fiction. Poe is generally considered to be the inventor of detective fiction genre.
आज अरुण बाली की पुण्यतिथि है। वे प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता थे जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में अपने अभिनय के लिए जाने जाते थे। 1988 में फिल्म उत्तेजना के साथ अभिनय की शुरुआत की थी उन्होंने और इस फिल्म में अरुण बाली को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए याद किया जाता है। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म थ्री इडियट्स से उनका ये डायलॉग।
शुरुआत तुमने की है तो खत्म तुम ही करोगे। इसे विद्या चाहिए और मुझे सिर्फ डिग्री।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और मनोज को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।